नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक छ। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। यथाकाशो स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। यथा जिस प्रकार आकाश स्थित आकाश में स्थित नित्यम सदैव वायु हवा सर्वत्रगह सभी जगह बैठने वाले सभी जगह बहने वाले महान तथा उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि सारे प्राणी मत्स्थानि मुझमें स्थित इति इस प्रकार उपधारय। समझो, इस श्लोक का अनुवाद है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। आप भी बोलिए, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जानो। इस श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसने हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वो आकाश से परे नहीं होती। इस प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप हैं और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील हैं। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, जद भीषा बातो पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती हैं। तैत्तरीय उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ही आवा पृथ्वीबौ विधृतौ तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा जस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। यथाकाशो स्थितो नित्तं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारयः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। इस नवम अध्याय में भगवान अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो गुह्य ज्ञान क्या है? वो गुह्य ज्ञान है भगवान का परिचय। इस अध्याय में भगवान बहुत सरल रूप से, सही ढंग से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं वो कौन है। हम देखे हैं भगवद गीता के शुरू में अर्जुन को पता नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवान को अर्जुन अपना भाई के रूप में, अपना फूफा के लड़का के रूप में दर्शन कर रहे थे। पिता के बहन को क्या कहते हैं? फूफी। बुआ। ना अर्जुन का मामा वसुदेव कुंती देवी के भाई थे। कृष्ण का पिता वसुदेव और अर्जुन का माता कुंती देवी भाई और बहन। तो कृष्ण अर्जुन का मामा का बेटा और अर्जुन कृष्ण का बुआ का बेटा। तो ऐसे संपर्क था दोनों के बीच। और कुरुक्षेत्र का जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन जब ये युद्ध करने में इनकार कर दिया और उसके पश्चात मोहित होकर क्या करना उसका कर्तव्य है ये विचार करने में अर्जुन को जब मुश्किल हो रहा था, तब अर्जुन भगवान को पूछा, कृष्ण को पूछा, कृष्ण मुझे तो पता नहीं लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं, तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। शिष्यस्ते अहं शाधि मांग तांग प्रपन्नम। प्रपन्नम, प्रपन्न का मतलब अपने आप को मैं आपके पास समर्पण कर रहा हूं, आपका शरण ले रहा हूं, आपसे मैं प्रपत्ति कर रहा हूं और आपको मैं अपना गुरु के रूप में ग्रहण करके ये प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। शिष्यस्तेहं शाधि मांगतां प्रपन्नम। तब भगवान अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। भगवान शुरू शुरू में अर्जुन को समझाया कृष्ण कौन है, वो कौन है और अर्जुन कौन है, पर फिर भी उपदेश देते हुए भी भगवान अपना स्वरूप अर्जुन के सामने उद्घाटन नहीं किया। पर चौथा अध्याय का शुरू में भगवान क्या कह रहे हैं, तीसरी अध्याय में भगवद गीता का तीसरी अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में समझाया अर्जुन को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को कर्तव्य क्या है, अर्जुन को कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। ये समझाने के पश्चात चौथा अध्याय के शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन इस ज्ञान में मैं पहले विवश्वान को दिया था, सूर्य देव को दिया था, इमं विवश्यते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। ये जो अव्यय, ये जो अविनाशी ज्ञान है, ये जो नित्य प्रज्ञा और विज्ञान है, इसको मैं सबसे पहले सूर्य देव को प्रदान किया था। प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, किसको, इमं योगम, इस योग को, विवश्यते मतलब विवश्वान को, सूर्य देव को, और विवश्वान इस ज्ञान को प्रदान किया था अपना पुत्र मनु को, वैवश्यत मनु को, विवश्वान मनवे प्राह और मनुर इच्छा को वे अब्रवीत, और मनु उनका पुत्र इक्ष्वाकु को इस ज्ञान प्रदान किया था। और वैसे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ऐसे राजर्षियों के माध्यम परंपरा के क्रम के अनुसार, मतलब गुरु से शिष्य, जैसे पहले कृष्ण ने विवश्वान को दिया था, जब विवश्वान इस ज्ञान को प्राप्त हुआ था तब विवश्वान शिष्य बनकर कृष्ण से इस ज्ञान प्राप्त हुआ। कृष्ण है गुरु, विवश्वान था शिष्य, पर उसके पश्चात विवश्वान गुरु के रूप में अपना पुत्र को शिष्य बनाकर इस ज्ञान प्रदान किया, मनवे प्राह मनु को दिया, मनु उसके पश्चात इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दान किया था। तो ऐसे गुरु शिष्य के माध्यम इस ज्ञान का प्रवाह परंपरा के अनुसार चल रहा है। परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, जिन व्यक्ति ने इस ज्ञान को प्राप्त हुए थे वो कौन से आदमी थे, कौन से व्यक्ति थे, उन्होंने सब राजर्षि थे। राजर्षि मतलब जो राजा असल में ऋषि है, राजा ऋषि इति राजर्षि, उन्होंने राजा थे परंतु उनका मनोभाव था ऋषि का जैसा। राज्य शासन करते हुए भी, प्रासाद में रहते हुए भी, इतने संपदा के बीच रहते हुए भी उन्होंने असल में ऋषि थे। राजर्षयो विदु, कौन से जैसे विवशान थे एक मनु, इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु वंश में किसका जन्म हुआ था? श्री रामचंद्र का। इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र का जन्म हुआ था। और रामचंद्र का जो पूर्वज जो हैं उनको देखिए कौन है। रामचंद्र का पिता थे दशरथ, दशरथ के पिता अजय, अजय के पिता रघु। तो वैसे ये सब राजर्षि थे, ये कोई मामूली राजा नहीं थे इन लोगों में, ये ऋषि जैसे थे। पर राज्य शासन कर रहे थे, क्यों? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। असल राजा जो है वो कभी नहीं सोचते हैं कि ये राज्य उनका है और उनका भोग करने का वस्तु है। उन्होंने, उनको अच्छी तरह पता रहता है कि सारे संसार के सारे वस्तु भगवान का ही है। मालिक है कौन? मालिक, असल मालिक है भगवान, और हम सब उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें कुछ मिल रहा है। जब कुछ हमें कुछ दाय भार मिलता है, जैसे जायदाद मिलता है या राज्य मिलता है, आज बहुत सारे आदमी और बहुत जगह के ऊपर शासन करने का जब अधिकार मिलता है, तो क्या हमें समझना चाहिए कि ये मेरा संपदा है और ये सारे मेरा नौकर है? नहीं। जो जिसको सही ज्ञान है, जो ज्ञानवान है, जिसको जिनको आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है, उन्होंने हर तरह हर समय सोचते हैं कि सारे वस्तु भगवान के हैं, और ये जो हमें मिल रहा है ये भगवान का ही कृपा से मिल रहा है। अगर कुछ उत्तरदायित्व हमें मिला है तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये भगवान का ही दान है और भगवान के लिए हमें इसको पालन करना चाहिए, इसको जिम्मेदारी हमें मिल रहा है, भोग करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसको देखभाल करने का। जैसे नौकर अपना मालिक का संपदा को संभालते हैं, जैसे नौकर प्रभु का प्रासाद को देखभाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता ना, मालिक नहीं रहता है, मालिक बाहर रहते हैं, परंतु जो प्रासाद मालिक का जो है वो नौकर का जिम्मेदारी में है, नौकर उसको देखभाल करता है। नौकर कभी नहीं सोचता है कि ये सारे संपदा मेरा है। तो वैसे ही असल राजा जो थे, विशेष रूप से भारत के जो महान राजाओं ने थे, उन्होंने हर समय ये सोचते थे कि उनका जो राज्य है वो भगवान का ही है, और भगवान का प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने वो राज्य का संभालते थे। और वैसे जो राजा है वो असल में ऋषि है, राजर्षि। तो भगवान अर्जुन को बताया, राजर्षियों की माध्यम गुरु परंपरा के अनुसार। परंपरा का मतलब क्या होता है? गुरु से शिष्य, शिष्य से उनका शिष्य, वो शिष्य से उनका शिष्य, ये है परंपरा, गुरु शिष्य का परंपरा। तो ये एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, परंतु सकालेने हो महता योग नष्ट परंतप। काल के प्रभाव से ये योग नष्ट हो गया था। तब स एवायं मयाते अद्य योग प्रक्त पुरातन। ये जो पुराना योग जो मैं बहुत साल पहले मैं विवशान को दान किया था, ये हम तुमको दे रहा हूं। तब अर्जुन भगवान को प्रश्न किया, अर्जुन ने भगवान को पूछा, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवश्यत कथमेतद् विजानियाम तमादो प्रक्तवानीति। तुम्हारा जन्म कृष्णा तो उस दिन हुआ था, अपरं भवतो जन्म कुछ साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ, परंतु विवश्वान का जन्म तो बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले विवश्वान का जन्म हुआ था। परं जन्म विवश्यत, तो कथम एतद् विजानीयम, कैसे मैं समझूंगा कि इस ज्ञान तुम विवश्वान को दिए थे। तब भगवान अर्जुन को बताया, ये बात सही है, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन, अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहुत बहुत बार जन्म हुआ था, परंतु उस जन्म के बारे में तुमको कुछ याद नहीं है, बल्कि मेरे सारे जन्म के बारे में याद है। ये है भगवान के साथ जीव के पार्थक्य, जीव का, जीव और भगवान में अंतर ये है। हम हमारे पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, हमें याद है पिछले जन्म के बारे में, जबकि हमारा जन्म हुआ था, हम थे, इस जन्म के पहले भी हम थे, उसके पहले भी हम थे, अनादिकाल से हम हैं, परंतु पूर्व में यद्यपि हमारा बहुत बहुत बार जन्म हो चुका है, उस जन्म के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। परंतु तानि अहं वेद सर्वानि नत्थं वेत् नत्वं वेत्थ परंतप, उस जन्म के बारे में मैं सब कुछ, हमें याद है, वेत् तानि अहं वेद सर्वानि, उस जन्म के बारे में पूर्ण रूप से सर्वानि हमें याद है, परंतु न तंग वेत्थ परंतप, परंतु तुम्हारा कोई याद नहीं है। और उसके पश्चात भगवान बताया कैसे ये होता है। भगवान अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन, मैं अजय हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। अजय अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं श्याम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाया। यद्यपि मैं अजय हूं, जन्म रहित हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है, परंतु संभवामि, मैं आता हूं, और जब मैं आता हूं, कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि मैं जन्म लिया है। विशेष रूप में भगवान जब मनुष्य रूप के लीला करते हैं, मनुष्य रूप से लीला करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के रूप में भगवान जब लीला करते हैं, श्री रामचंद्र के रूप में जब लीला करते हैं, वामन देव के रूप में जब लीला करते हैं, वैसे इस लीला में मालूम होता कि भगवान जन्म लिए हैं, माँ और पिता के माध्यम, माता और पिता के माध्यम, एक मामूली इंसान की तरह जन्म लिए हैं, परंतु असल में भगवान जन्म नहीं लेते हैं। संभवामि, मैं, मेरा आविर्भाव होता है, मैं आता हूं, कैसे, आत्म माया, मेरे अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैं आता हूं। संभवामि आत्म माया, और क्यों आते हैं भगवान, भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, ये बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानि होता है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, तब धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ऐसे भगवान अपना स्वरूप अर्जुन के समक्ष प्रकाश करना शुरू किया। और धीरे धीरे भगवान अपना स्वरूप प्रकाश करते रहे। अब जो ऐसे चार, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठ अध्याय, सप्तम अध्याय, अष्टम अध्याय, इसके पश्चात नवम अध्याय के शुरू में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन हाँ, मैं तुमको सारे विद्याओं का राजा जो है, राजविद्या, सारे ज्ञान को जो राजा है, राजा का मतलब श्रेष्ठ, समस्त ज्ञान में, समस्त विद्या में, समस्त जानकारी में जो सर्वश्रेष्ठ है, उस ज्ञान को मैं तुमको अभी प्रदान करूंगा। राजविद्या राजगुज्जम, और वो ज्ञान कैसी है, पवित्रम ही एतद उत्तमम, ये ज्ञान पवित्र है और ये ज्ञान सबसे सर्वोत्तम है। प्रत्यक्ष भगवं धर्मं सुसुखुम कट्टमप्पयम्, तो इस ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप में मैं तुमको दूंगा, और इस ज्ञान को पालन करना, पर इस ज्ञान को अभ्यास करना बहुत आसानी से संभव होता है। सुसुखम, सुख के साथ, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस ज्ञान के माध्यम जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान के ओर जाने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत ही आसान है। ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अर्थात यो कैसे ज्ञान है, भगवान को पहचान कर भगवान के पास जब अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जिसे सरल रूप से भक्ति कहा जाता है, वो जो पंथा है, वो जो राह है, वो जो तरीका है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और वो हम बहुत सुख के साथ संपन्न कर सकते हैं। तो ये ज्ञान, इस ज्ञान भगवान इस नवम अध्याय में प्रदान कर रहे हैं, और करते हुए भगवान अर्जुन को बताया कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान सारे संसार के सृष्टि करने वाला, भगवान सारे संसार के पालन करने वाला, ये ही भगवान बता रहे हैं। और कैसे भगवान सारे संसार को पालन करते हैं, वो भगवान का अचिंत शक्ति के द्वारा संभव होता है, इसका ही वर्णन अब हो रहा है। जैसे पहले दो श्लोक में इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप में हुआ, भगवान बताया, जिसका विचार हम कल किया था, तो फिर उसका थोड़ा सा, उसका फिर से हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। माया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के रूप में व्याप्त है। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, जो अव्यक्त, जिस रूप प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, उस रूप के द्वारा भगवान सर्वत्र विराजमान है। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। व्याप्त है मतलब फैला हुआ है। जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहं तेषु अवस्थितः। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे जीव, समस्त जीव मेरे मुझ में है, समस्त जीव मुझ में है किंतु न चाहं तेषु अवस्थितः। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, ये भगवान बताया। मत्स्थानी सर्वभूतानि, और उसके पश्चात भगवान बताया कि नौ च मत्स्थानी भूतानी पश्यामि योगमैश्वरम। एक बार भगवान भूत बताया कि समस्त जीव मेरे मुझ में है, फिर भगवान यहां कह रहे हैं जीव समस्त जीव मुझ में नहीं है। जैसे यह बताया मत्स्थानी सर्वभूतानी और न च मत्स्थानी भूतानी। एक बार भगवान कह रहे हैं कि मुझ में है, उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि मुझ में नहीं है। न च मत्स्थानी भूतानी पश्यमे योगम ऐश्वरम। ये जो है ये मेरा योग ऐश्वर्य है, मेरा योग अचिंत शक्ति। भगवान का ये शक्ति हम चिंता के अतीत हैं, हमारे मन मनभाव के परे हैं, हमारे कल्पना के परे हैं, हमारे मन की चिंतन के द्वारा हम उसको समझ नहीं पा सकते हैं। और उसका ही विश्लेषण करते हुए भगवान अब कह रहे हैं, जो आज जिसका विचार हम आज कर रहे हैं, कि जैसे आकाश जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे वायु आकाश में स्थित है ना, पंचभूत हैं। पंचभूत क्या है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। मिट्टी के परे हैं पानी, पानी के परे है अग्नि, अग्नि के परे है वायु, वायु के परे है आकाश। वायु आकाश में स्थित है, आकाश है आधार और उस आधार पर वायु स्थित है। फिर भी आकाश वायु से अलग है, आकाश और वायु को मिश्रण नहीं होता है। वैसे ही समस्त प्राणी समस्त जीव भगवान में भगवान पर आश्रित हैं, भगवान के ऊपर आधारित हैं, फिर भी भगवान उससे अलग है। इसका विश्लेषण इसका विचार कल हम विशेष रूप से किया था, तो वो हम आज फिर से नहीं करेंगे। और असल उद्देश्य क्या है इस श्लोक का? भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कैसे भगवान ही समस्त प्राणियों का स्रोत है। हम सब कहां से आए हैं? हम सब क्या मिट्टी पानी अग्नि से बना है? हमारा शरीर मिट्टी पानी अग्नि से बना है, परंतु हम क्या शरीर हैं या शरीर से परे और कुछ है? हम हमारा शरीर के परे हैं। शरीर भौतिक है, परंतु हम आध्यात्मिक हैं। और वो हम कौन है? आत्मा है। हम जब तक ये शरीर में रहते हैं तो शरीर जिंदा रहता है, जब हम ये शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो क्या होता है? शरीर का मृत्यु होता है। शरीर का मृत्यु मतलब शरीर में चेतना नहीं रहता है, शरीर में जीवन नहीं रहता है, शरीर में कुछ कार्य करने का क्षमता नहीं रहता। आज हम ये शरीर के द्वारा कितना कुछ कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, कितना कुछ ये शरीर के द्वारा हम कर सकते हैं, परंतु जब आत्मा शरीर छोड़कर चले जाएंगे तो शरीर का क्या होगा? कुछ भी करना नहीं सकेंगे, शरीर यहाँ ऐसे पड़ा रहेगा। और जो शरीर इतने साल हम पालन किया है वो शरीर हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, जय श्री श्री गौर निताय की जय। वो शरीर, हाँ, वो शरीर विल स्टार्ट टू रॉट, क्या बोलते हैं, सर सड़ना शुरू हो, वो शरीर दो तीन दिन में सड़ता रहेगा और कुछ दिन के बाद वो शरीर एकदम खत्म हो जाएगा। उसके पर पूर्व ही हम ये शरीर को जला देते हैं। ये हमारा भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय जो आचरण जो है, ये बहुत बहुत ऊंचे मार्ग के हैं। जो शरीर नष्ट हो गए हैं, जो शरीर सड़ने वाला है, उसको रखने से फायदा क्या होगा, उसको जला दो ताकि आत्मा जल्दी जल्दी वहाँ इस शरीर को, बंधन को छोड़कर चले जा सकते हैं। शरीर जब तक रहता है तो आत्मा कभी कभी और शरीर के बंधन में रह जाता है, पर शरीर जब जल जाता है, शरीर नहीं रहता है, तब आत्मा को बंधन भी नष्ट हो जाता है। तो हम असल में कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो ये हम जो आत्मा हैं, ये ज्ञान प्राप्त होना तभी संभव होता है जब हम भगवद गीता के ज्ञान प्राप्त होते हैं, नहीं तो संभव नहीं होगा। परंतु जब हम भगवद गीता सही ढंग से समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा अविनाशी है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न तो कभी इसका मृत्यु होता है। और ये ज्ञान प्राप्त होना मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए नियमित रूप में भगवद गीता पाठ करना चाहिए और भगवद गीता को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम आपको अनुरोध करते हैं कि हर शाम को मंदिर में आके भगवद गीता का पाठ कीजिए, भगवद गीता के ज्ञान प्राप्त होइए। तो भगवद गीता के ज्ञान जो प्राप्त आप हो रहे हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है? आप नियमित रूप में कौन कौन आते हैं यहाँ? बहुत अच्छा, आप जो नियमित रूप में आते हैं, आ रहे हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है? आत्मिक आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा। आत्मिक आनंद मिल रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है ना? पता चल रहा है धीरे धीरे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर का बंधन में हम अगर फंसे रहेंगे तो मृत्यु के समय बहुत मुश्किल होगा। ये शरीर जब छोड़ के जाना होगा, कभी ना कभी तो शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तब अगर शरीर का बंधन में हम फंसकर रहेंगे, बंधे रहेंगे, तब ये शरीर को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। परंतु हमको जब पता चल जाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शरीर तो एक बेश जैसा है, एक पोशाक है, तो इसको छोड़ने में तब कोई तकलीफ नहीं होगी, तब आनंद होगा। चलो, यह पुराना शरीर छोड़ने का अवसर मिल गया है, अब एक नया शरीर मिलेगा। जैसे कपड़ा पुराना हो जाने के बाद अगर कोई आकर एक नया कपड़ा देता है तो हमें कैसा लगता है? आनंद होता है, ओ चलो आज एक नया कपड़ा मिल गया है। या तो गाड़ी पुराना हो गया है, कोई आकर बोला चलो भाई वो गाड़ी तो पुराना हो गया, उसको फेंक दो, एक नया गाड़ी तुमको मैं दे रहा हूँ। तब आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरा नया गाड़ी का जरूरत नहीं है, मैं पुराना गाड़ी में ही रहना चाहता हूँ। तब पर बल्कि ये कब संभव होता है? जब हमें पता चलता है कि ये शरीर हम नहीं है, हमारा स्वरूप में हम आत्मा हैं और शरीर केवल एक आवरण है आत्मा का, और ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो ये पुराना शरीर छोड़कर हमें एक नया शरीर ग्रहण करना चाहिए। तब क्या कष्ट होगा मृत्यु के समय? तब कभी कष्ट नहीं होगा, तब हम सोचेंगे कि आप चलो एक नया शरीर तो मिल जाएगा, और अगर हमको आध्यात्मिक शरीर मिल गया तो उससे बढ़कर तो और कुछ नहीं प्राप्ति हो सकता है। आध्यात्मिक शरीर मिलने से हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो जो भगवान को याद करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं वो निश्चित रूप में भगवान के पास वापस चले जाते हैं। ये प्रतिश्रुति भगवान स्वयं भगवत गीता में दिए हैं। जंग जंग बापी स्मरण भावम तजतंते कलेवरम। कलेवर का मतलब है शरीर। जो जिस भाव लेकर अपना शरीर त्यागते हैं उसके अनुसार उसका अगला शरीर मिलेगा, और जो भगवान को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं वो निश्चित रूप में भगवान के पास वापस चले जाते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें भगवद गीता नियमित रूप में चर्चा पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान उसको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। कोई प्रश्न है किसी को? ओके।